नमस्कार, मेरा नाम आनंद है और आज हम लोग गीतायन की इस कड़ी में बात कर रहे हैं जातुगृह की। सुबोध घोष की कहानी जातुगृह पर बंगला फिल्म तो 1965 में ही बन चुकी थी, उसी कहानी को आधार बनाकर गुलजार ने 1987 में इजाजत नाम की फिल्म बनाई। गुलजार की फिल्म थी तो उस दौर के कला फिल्मों की तरह इसकी समीक्षाएं भी जबरदस्त आईं। 1988 और 89 में ही इसे कई पुरस्कार भी मिले थे। दर्शकों ने इसे देखा, सराहा, मगर यह हिट फिल्म थी ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि पुराने बीते हुए दौर के किसी प्रेम प्रसंग की याद दिला जाती है, इसलिए मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है वाले गाने को सुनते ही उदासी को दबाती छुपाती एक मुस्कान सी चेहरे पे जरूर आ जाती है। फिल्म की कहानी अमीर परिवारों में शुरू होती है, नहीं इन्हें मध्यम वर्गीय कहना समीक्षकों की जबरदस्ती थी, क्योंकि रेलवे के उच्चाधिकारी या महंगी श्रेणियों में चलने वाले लोग न हों तो उस दौर में ऐसे रेलवे के वेटिंग रूम का इस्तेमाल बहुत कम ही लोग कर सकते थे। कहानी का नायक महेंद्र यानी नसरुद्दीन शाह एक रेलवे स्टेशन पर उतरकर वेटिंग रूम की ओर जा रहा होता है और उसी वक्त बारिश शुरू हो चुकी होती है। वेटिंग रूम में पहले से ही मौजूद स्त्री, जिसका नाम सुधा है फिल्म में, वो रेखा होती है और वो इस महेंद्र को देखकर छुप जाने की कोशिश करती है। बाद में उनका आमना सामना भी होता है और यहाँ से फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती। महेंद्र की फोटोग्राफी से जुड़े अच्छे चलते हुए व्यवसाय की बात होती है, उसके दादा सम्मी कपूर के बारे में बताया जाता है। महेंद्र का जो दादा होते हैं उन्होंने महेंद्र का विवाह सुधा से तय कर दिया होता है, लेकिन वो वर्षों से शादी टालता रहता है। आखिर वो सुधा को बताता है कि उसे माया यानी अनुराधा पटेल पसंद है और आज के हिसाब से नारीवादी सी माया जो थी उसे शायद सोशल मीडिया पर फेमिनाजी कहते। कुछ कविताएं महेंद्र के लिए छोड़कर माया गायब हो जाती है और महेंद्र इस बीच में सुधा से शादी कर लेता है। उसका जीवन खुशहाली चल रहा होता है कि माया लौट आती है और अब महेंद्र माया के जीवन में तनाव शुरू हो जाता है। महेंद्र ने सुधा को माया के साथ बिताए दिनों के बारे में भी काफी कुछ बता रखा था। एक दिन माया आत्महत्या की कोशिश करती है और उसके बाद महेंद्र दोबारा माया का ध्यान रखना शुरू कर देता है। अब सुधा को लगने लगता है कि वो तो बेकार ही महेंद्र और माया के जीवन के बीच में पड़ी हुई है। इस बारे में बात करने पर महेंद्र कहता है कि वो माया को घर ले आया ताकि बाकी गलतफहमियां बातें करके दूर की जा सके। तब तक माया ने फोन पर महेंद्र और सुधा की बातचीत सुन ली होती है। उसे लगता है कि वो किसी शादीशुदा की जिंदगी बिगाड़ रही है, इसीलिए वो शहर छोड़कर चली जाती है। जब महेंद्र देखता है कि माया जा चुकी है तो वो अकेला घर लौटता है और उसे पता चलता है कि उसके वापस आने तक में सुधा भी घर छोड़कर चली गई है। सदमे से महेंद्र को दिल का दौरा पड़ जाता है और ये खबर सुनकर माया लौट आती है और बीमार महेंद्र का ध्यान रखने लगती है। जैसे जैसे महेंद्र ठीक होता जाता है उसे लगता है कि उसे सुधा को घर वापस ले आना चाहिए। सुधा पंचगनी में शिक्षिका की नौकरी करती थी और वो चिट्ठी लिख देती है कि महेंद्र चाहे तो माया से शादी कर सकता है, उसे कोई ऐतराज नहीं। माया को जब समझ में आता है कि वही महेंद्र सुधा के विवाहित जीवन को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है तो वो एक रात को घर छोड़कर निकलती है। महेंद्र उसका पीछा करने की कोशिश करता है लेकिन एक्सीडेंट में माया की मौत हो जाती है। पुराने दौर की ये सारी कहानी सुनाकर फिल्म जब वर्तमान में लौटती है तो माया की मौत के बारे में जानकर सुधा अफसोस जताती है। उस वक्त सुधा का पति शशि कपूर सुधा को लेने आ पहुंचता है। माफी मांगने की बात सोच रहे महेंद्र को समझ आता है कि सुधा ने बीते दौर में कभी दोबारा शादी कर ली थी। इस बार जाते समय सुधा भी महेंद्र के पैर छूते हुए उससे माफी मांगती है और जाने की इजाजत लेती है। आशीर्वाद शुभकामनाएं देकर उसे विदा करता महेंद्र अकेला खड़ा रह जाता है। सुधा का चेहरा देखकर उसके पति को अंदाजा हो जाता है कि अभी अभी मिला व्यक्ति शायद उसका पहला पति था। फिल्म के अंतिम दृश्य में थोड़े धीमे कदमों से सुधा दूर जा रही होती है और महेंद्र वहीं वेटिंग रूम के बाहर खड़ा उसे जाते हुए देखता रह जाता है। फिल्म की शुरुआत के दौर में देखेंगे तो महेंद्र यानी नसरुद्दीन शाह का जो किरदार है वो बड़े मजे में दिखाई देता है। पत्नी छोड़कर गई तो क्या हुआ, सुधा नहीं तो माया तो उसकी बीमारी में ख्याल रखी रही है। शुरू में ही वो सीधा सीधा सुधा और अपने दादाजी को ये कहने की हिम्मत नहीं दिखाता कि उसे माया पसंद है और उसी से शादी करना चाहता है। इसका नतीजा अंत में न खुदा ही मिला न मिसारे सनम जैसा होना था ये तो तय था। यहाँ सबसे पहले भगवद गीता का कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म वाला श्लोक देखिए। चौथे अध्याय के 18वें श्लोक में कहा जा रहा होता है कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वही बुद्धिमान है। इसे समझने के लिए कर्म के त्याग को भी देखना होगा, क्योंकि दुख समझकर कष्ट के डर से कर्म न करना राजस त्याग होता है और मोह या आलस्य के कारण कर्म न करना तामस त्याग है। ऐसे त्याग के लिए कहा गया है कि ये तो ढोंग है। तीसरे अध्याय का 6ठा श्लोक कहता है कि ऊपर ऊपर से तो इंद्रियों को कोई रोके बैठा हो लेकिन मन में उसी का चिंतन कर रहा हो तो वो अकर्म नहीं कर रहा होता, असल में वो ढोंग कर रहा होता है। अब जब आप महेंद्र की चुप्पी को देखेंगे तो पता चलेगा कि उसे एक फैसला लेना था लेकिन वो फैसला नहीं लेता क्योंकि उसे दादाजी को और सुधा को दुखी नहीं करना था। ये एक राजस त्याग था। अगर तीसरे अध्याय के 6ठे श्लोक के आधार पर देखें तो वस्तुतः वो ढोंगी था। यही श्रेय और प्रेय का सिद्धांत भी काम आता है। उस समय जो फायदेमंद लगे लगे लंबे समय में जिससे दुख हो वो प्रेय है। तत्काल बहुत सुविधाजनक ना भी हो तो भी लंबे समय में जिससे फायदा होने वाला है ऐसे कर्म को प्रेय कहा जाता है। तात्कालिक सुविधाओं के लिए प्रेय चुनकर महेंद्र ने अपने आगे का नुकसान किया था। यहीं पर व्यवसायिकात्मिका बुद्धि के संबंध में भगवद गीता में क्या कहा गया है उसे भी देखिए। दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक कहता है कि निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है। कम जानने वालों के लिए संकल्प बहुत भेदों वाले या कहिए कि अनंत होते हैं। अगर महेंद्र ने एक निश्चय किया होता तो उसके लिए फैसला केवल एक होता। उसकी तुलना में सुधा के लिए फैसला लेना आसान भी है और लंबे समय में सुविधाजनक भी यानी कि श्रेय भी। शुरुआती दृश्यों में भले ऐसा लगा होगा कि महेंद्र के दोनों हाथों में लड्डू है लेकिन अंतिम दृश्य में वो खाली हाथ ही खड़ा रह जाता है जबकि सुधा अपने परिवार के साथ आगे बढ़ रही है। जिसे आमतौर पर आध्यात्मिक कहकर ये बताया जाता है कि ये संभवतः संन्यासियों के लिए है। वो आम लोगों के जीवन में कैसे काम करती है इसका हमने आपको छल से केवल एक उदाहरण दिया है। बाकी ये जो धोखे से पढ़ा डाला वो नर्सरी के स्तर का है और पीएचडी के लिए आपको स्वयं भगवत गीता उठाकर पढ़नी पड़ेगी। ये तो आपको याद ही होगा। धन्यवाद।